الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ہم سورہ انعام کی آیات کل پڑھ رہے تھے، آیات نمبر 99، 100، 101 اینڈ 102، 99 سے 102. تو یہ سورہ انعام کی یہ آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے. یہاں تک پڑھ لیا تھا وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، سبحانہ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، کہ پاک ہے وہ ذات اور بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یا بہت بلند ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا. نئی طرح پر مطلب بدع یبدعو، یعنی بالکل ابتدا کرنے والا، نئے سرے سے کسی کو کسی کی شروعات کرنے والا وہ ہے اللہ رب العزت، ایسا ہے، بدیع ہے. السماواتی والارض، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. انا یکون له ولد، انا کہاں یا کیسے یا کیوں کر، انیشیٹر، انہوں نے انگریزی کا لفظ بھی لکھ دیا، انیشیٹر، انیشیٹ کرنے والا کسی آسمان اور زمین کا نا. تو انا یکونو، کیوں کر ہو سکتا ہے وہ، لہو اس کے لیے، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے ولد، ایک بیٹا، رائٹ، یا کوئی بیٹا، اس کے لیے کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے نا. ولم تکل لہو صاحبہ، حالانکہ واو کا مطلب یہاں پر کیا، واو حالیہ، حالانکہ اردو میں جیسے اس کا ترجمہ کریں گے، اس حال میں کہ، ہا نہ کہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، اس حال میں کہ، یعنی حال یہ ہے کہ کیا حال ہے، لم تکن، نہیں ہے لہو، تکن لہو اس کے لیے، نہیں ہے اس کے لیے صاحبہ. صاحبہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، بیوی کے لیے، بیوی سے بھی اس کا ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے، صاحب کے لیے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صاحبہ، ٹھیک ہے، جو ساتھ رہنے والی عورت ہوتی ہے تو وہ عام طور پر جو بیوی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ جو ہے وہ صاحبہ استعمال کیا. قرآن مجید میں بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے تین الفاظ استعمال کیے بیوی کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کی تفصیل ایسے علماء نے لکھی کہ ایک لفظ استعمال کیا ہے زوجہ، زوجہ، ٹھیک ہے. زوجہ کس بیوی کو کہتے ہیں، زوجہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہو اور اچھا تعلق ہو، ٹھیک ہے، یعنی ذہنی ہم آہنگی بھی ہو اس کے ساتھ، ذہنی ہم آہنگی، ٹھیک ہے. और जो एक मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है वो भी हो जाहिर सी बात, ठीक है, उसको जौजा कहा कुरान मजीद ने, ठीक है। तो जहां पर जैसे नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के लिए अजवाज का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो जौजा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनके साथ मियाँ बीवी का ताल्लुक तो था ही, लेकिन जहनी हम आहंगी भी थी और प्यार मोहब्बत का भी ताल्लुक था, बल्कि प्यार मोहब्बत कभी लेकिन जहनी हम आहंगी, लेकिन यानी वो एक ही मजहब पर थी, एक ही दीन पर थी, एक ही मिजाज की थी, मानने वाली थी, ठीक है। दूसरा लफ्ज है इमरा, इमरा किसको कहते हैं कि जिसके साथ जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता तो हो लेकिन जहनी हम आहंगी ना हो, जहनी हम आहंगी ना हो, यानी मिजाज ना मिलता हो, एक यानी जो जहनी हमांगी भी जो है ना वो भी इस मानी में कि पॉजिटिवली जहनी हम आहंगी ना हो, पॉजिटिव कामों के अंदर जहनी हम आहंगी का होना, यानी एग्रीमेंट का होना पॉजिटिव बातों में, नेगेटिव बातों में एग्री करते भी है ना, यानी शौहर भी काफिर है, बीवी भी काफिर है, तो उसके लिए फिर इमरा का लफ्ज इस्तेमाल किया, जैसे वमरातुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब की जो बीवी थी उसकी उसके साथ जहनी हम आहंगी थी, लेकिन किस चीज में थी, बुराई में थी, नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में वो बीवी उसके साथ थी अबू लहब के साथ। तो ऐसी बीवी के लिए भी कुरान मजीद ने इमराअतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी वो औरत है, औरत वो बीवी होने के लायक नहीं है, बीवी तो जौजा, जौजा जो होती है ना वो होती है असल में बीवी, ठीक है, जो बीवी कहलाने के लायक भी होती है, सही है, ये तो बस औरत है। तो या तो ये डिसएग्री करती है अपने शौहर से, अगर शौहर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, या अगर शौहर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान जो हुआ भी ना तो उसको जो है वो अल्लाह ताला ने डिसरिगार्ड कर दिया, उसको तो डिसरिगार्ड ही कर दिया, है ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा मर्दों की तरफ, इमरआता नूहन व इमरआता लूत, लूत अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम की, जो उर्दू में तो एक बीवी का ही लफ्ज है ना, तो हम बीवी का ही लफ्ज बोल सकते हैं, तो लूत और नूह अलैहि सलाम की जो बीवियां थी वो उनसे पॉजिटिव में डिसएग्री करती थी, ईमान नहीं लेकर के आई थी उनके ऊपर, ठीक है, जैसे कि होता है ना कि भाई घर में घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है ना, बेशक मुर्गी तो है, दूसरे लोग तो उसको बड़ी इज्जत से देखते हैं, मुर्गी है या तो मुर्गी की बिरयानी है बड़ी इज्जत, लेकिन घर की मुर्गी है ना तो कहें ये तो दाल बराबर है, इसकी क्या हैसियत। तो उसी तरीके से उन्होंने जो है वो अपने शौहर को इस तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया था। तो इमरा का लफ्ज भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया ऐसी बीवी के लिए जो कि बीवी कहलाने के काबिल नहीं है। और एक तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया वो है साहिबा, साहिबा का मतलब के साथ तो होती है लेकिन किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, साथ तो होती है क्योंकि साहिब किसको कहते हैं जो सोहबत में होता है, लेकिन ना तो जिस्मानी कोई ताल्लुक ना जो है वो कोई जहनी ताल्लुक, जहनी अमां कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। तो ऐसे को जो है वो साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया ऐसी बीवी के लिए, इसकी कोई मिसाल इस सोफे में नहीं आ रही, लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने अपने लिए कि भाई मेरी तो कोई बीवी नहीं कि अल्लाह की तो कोई साहिबा नहीं, यानी किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक, यानी अल्लाह ताला ने ये बात जो फरमाई ना यहाँ पर कि अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है उसकी तो कोई बीवी नहीं, तो वहां पर देखें लफ्ज कैसा सेलेक्ट किया अल्लाह ताला ने, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इवन लफ्ज भी जो है वो भी जौजा वाला सेलेक्ट नहीं किया अपनी बीवी का इनकार करने के लिए भी कि भई अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, उसके लिए जौजा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए इमरातुन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसके लिए साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी भी कोई बीवी नहीं है कि जिसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी ना हो, ऐसी भी कोई बीवी नहीं है अल्लाह ताला की, ठीक है, कुरान का एजाज इसको कहते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने पहली बात तो अरबी जुबान बनाई किसने, खुद से तो नहीं बन गई, अरबों ने तो नहीं बना ली, किसने बनाई, अल्लाह ने बनाई, ठीक है ना, अल्लाह ने डिफाइन किया अरबी जुबान में किसका क्या मतलब होना चाहिए, किसका क्या मतलब लोग लेंगे, किसका क्या मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया। फिर उसके बाद उस अरबी जुबान को अपने कुरान मजीद में इस्तेमाल कैसे किया, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल किया कि जो अल्लाह को नहीं मानते थे या जो अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे तो वो भी इसका इनकार नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, कि यार इस किस्म का जो अरबी का इस्तेमाल है ना, ये तो कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है वो तो ये काम कर ही नहीं सकता, ऐसा इस्तेमाल है अरबी जुबान का। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि ये मेरा कमाल, मेरा कलाम है ही नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है, तो भाई वाकई अल्लाह ही का कलाम है, अल्लाह ही ऐसी बात कर सकता है, अल्लाह ही अरबी जुबान को ऐसे इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि इस कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये एजाज कुरान होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से अपने दुश्मनों को हरा दिया, अपने रसूल के दुश्मनों को शिकस्त दे दी, आजिज कर दिया, इसको एजाज कुरान कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व सौहबतीही व बनीही। हाँ, सूरह अबसा व तवल्ला के अंदर जो है ना, अल्लाह ताला ने जो कयामत का अहवाल बयान किया है तो उसमें क्या फरमाया कि जिस दिन आदमी जो है ना वो अपने अलमरु मिन अखी, वो अपने भाई से भी भागेगा, यानी भाई भी भाई का मदद की मदद नहीं करेगा। सबसे पहले भाई की मदद का जिक्र किया क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में भाई ही भाई की मदद करता है या करना चाहिए कम से कम, ठीक है ना, अच्छा भाई अच्छे भाई की मदद करता है, तो कयामत के दिन वो भी मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की। वो उम्मी ही, और फिर उसके बाद माँ का जिक्र किया क्योंकि माँ जो होती है वो मोहब्बत तो बहुत करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को कमजोर बनाया, फिजिकली भी कमजोर बनाया, ठीक है ना। तो नबी अलैहि सलाम फरमाया कि ये क्या है, रफ़क़ा बिल कवारीर, अल्लाह नबी अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं अपनी बीवियों को कि ये तो वो है, क्या कहते हैं उर्दू में इसको, कवारीर के लिए कांच की जैसे ना गुड़िया कांच की बनी हुई, यानी फ्रेजाइल, आप गिने, जज़ाकुमुल्लाह, आप गिने हैं ये तो, ठीक है। तो अब माँ मोहब्बत तो बहुत करती है लेकिन वो मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो फिजिकली अल्लाह ताला ने उसको कमजोर बनाया है। तो इस वजह से भाई जो है ना वो मोहब्बत तो करता है, माँ से ज्यादा तो मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो मदद करने के काबिल होता है, बाप की तरह वो बूढ़ा भी नहीं होता, राइट, तो वो मदद करने के काबिल भी होता है, और माँ की तरह वो कमजोर वैसे भी नहीं होता क्योंकि वो औरत होती है, वो मदद करने के काबिल होता है। तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी ही, क्योंकि मोहब्बत में बाप जो होता है वो बहरहाल माँ के मुकाबले में कम ही होता है। फिर उसके बाद फरमाया व साहिबती ही व बनी ही, है जो बीवी होती है। अब वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना वो चूंकि मदद नहीं करेगी ना, अब वो कयामत के दिन तो मदद नहीं करेगी, तो वहां पे जौजती ही नहीं फरमाया क्योंकि जौजा तो वो होती है जो कि मदद करने वाली होती है, और इमरा वो होती है जो कि इंटेलेक्चुअली तो एग्री ना करती हो लेकिन फिर भी जिस्मानी ताल्लुक तो है ना भाई, भाई मर गया शोहर तो मैं बेवा हो जाऊंगी, तो इतनी तो उसको फिक्र होती है ना, बेशक वो उससे एग्री नहीं कर रही होती, बेशक वो उसको वो इंटेलेक्चुअली मदद नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी कि मर गया तो मैं तो बेवा हो जाऊंगी ना, भाई मेरा क्या बनेगा, भाई मेरा क्या बनेगा, ये तो उसको होता है ना फिक्र इमरा को। लेकिन साहिबा ऐसी होती है कि जिसको इसकी भी फिक्र नहीं होती, इसकी भी परवाह नहीं होती। तो कयामत के अहवाल जब अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि वहां पे बीवी भी मदद नहीं करेगी, तो वहां पर लफ्ज कैसा इस्तेमाल किया, साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या ये कुरान है, और इस कुरान की समझ हासिल करने से क्या माशा अल्लाह अकबर कबीरा, ठीक है। और फिर जो है वो बनी का जिक्र किया, चले ये तो काफी बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पे एक और नुकता बहुत अहम है इस आयत से मुताल्लिक जो कि हमने अभी पढ़ी, बदी और समावाती वल अर्ज, अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा, कि ये कैसे हो सकता है कि उसका कोई बेटा हो हालांकि उसकी कोई बीवी नहीं, क्योंकि तुम लोग इस हकीकत से वाकिफ हो कि दुनिया का निजाम जो अल्लाह ने बनाया है ना, तो तुम देखते हो ना कि भाई बेटा जो है ना वो तो उसी वक्त होता है जब बीवी हो, ठीक है, तो जब उसकी बीवी है ही नहीं तो फिर बेटा कहां से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मुशरिकीन मक्का जो थे, क्योंकि यहाँ पर तो मुशरिकीन मक्का से बात हो रही है, तो ये ईसाई तो थे नहीं, तो ईसाइयों ने तो नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला की बीवी बना दिया, ठीक है ना। तो वो बीवी के कायल थे ईसाई, लेकिन मुशरिकीन मक्का जो है ये बीवी के कायल नहीं थे, ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं उजैर, वो जो यहूदी थे, वो बीवी, वो भी बीवी के कायल नहीं थे, ठीक है। और ईसाई जो हैं वो भी सारे के सारे नहीं कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी बना दिया, तो लेकिन बेटे के कायल हो रहे हैं और बेटियों के भी कायल। मुशरिकीन मक्का जो है ये बेटियों के, इनमें से एक कैटेगरी थी जो कि बेटियों की कायल थी कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो भाई कहाँ से बेटियां आ गई, कहाँ से बेटा आ गया, जबकि बीवी ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्ना यकून लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा, ठीक है। इस कॉन्स्ट्रक्ट को, ये जो जुमला है, ये जो आयत है, तो इस कॉन्स्ट्रक्ट को अब क्या कहेंगे। जैसे हम जैसे कहते हैं ना अरबी लैंग्वेज के अंदर, भाई ये जुमला जुमला जो है वो शर्तिया है, ये जुमला जो है वो खबरिया है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला जो है वो फेलिया है, तो फिर ये जुमला जो है ये कौन सा वाला जुमला है, ठीक है। अब मैं अरबी ग्रामर की उसमें आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, यानी अगर आपने उर्दू जुबान में या अंग्रेजी जुबान में आप इस जुमले को बताएं कि भाई ये जुमला क्या, किस नौयत का ये जुमला है जो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, अन्ना यकून लहू वरतुन वलम तकुन लहू साहिबा, क्या है भाई ये किस किस्म का जुमला है, ये डिनायल सेंटेंस। अच्छा, आपने एक सेंटेंस का नाम बनाया, डिनायल सेंटेंस, यानी कोई और ट्राई करे, किस किस्म का ये सेंटेंस है। एग्जैक्टली, ठीक है, खवातीन ने सही जवाब दे दिया है, मर्द जो है ना वो फिक्र कर ले, इस्तेफहामिया, इस्तेफहामिया, इस्तेफहामिया तो इस्तेफहाम, सवालिया, थोड़ा सा और कोशिश करें, सवालिया से आगे बढ़ें, इस्तेफहाम इनकारी, माशाल्लाह अभी आप इम्तिहान देकर आए वफाक का, तो अब इस्तेफाम इनकारी। अच्छा, सीधा सीधा अंग्रेजी, इंग्लू वाले लोग हैं तो अंग्रेजी में जवाब दे दें तो समझ हमारे लिए आसानी हो जाएगी। है मोतरेजा, नहीं मोतरेजा तो कहीं से नहीं बनता, ये अब काफी अरसा हो गया आपको नाम पड़े। अच्छा, ये सीधा सीधा सा जो है ना ये लॉजिकल सेंटेंस है, क्या है, लॉजिकल सेंटेंस, ठीक है ना। उर्दू क्या बनती है इसकी, मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं आ रही इस वक्त, लॉजिकल, लॉजिक, मंतिक है, उर्दू में मंतिक कहते हैं, तो उर्दू के जो वो असल अरबी वाला मंतिक नहीं, बल्कि उर्दू में हम जिस चीज को मंतकी कहते हैं, लॉजिक, ठीक है ना। ये क्या है, ये लॉजिक नहीं है, कोई कहे कि नहीं ये लॉजिक नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये लॉजिकल सेंटेंस नहीं है क्या, फलसफा, फलसफा कहाँ से आ गया, माकूल, हाँ अकली, माकूल, बिल्कुल सही सही, माकूली, ये अकल को झंझोड़ने वाला सेंटेंस नहीं है क्या, क्या ये लॉजिकल सेंटेंस नहीं है क्या। बस ठीक है, रहने दें, बाकी आगे के सवाल जवाब उसी सवाल पे अटके नहीं रहे हैं, मैं आगे का सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये लॉजिकल सेंटेंस नहीं है, इसका जवाब दे कोई, है कि नहीं है। अगर किसी को एतराज है कि नहीं है लॉजिकल सेंटेंस नहीं है तो बताएं, नहीं है किसी को एतराज इस बात पे, तो फिर हम क्यों ये बात करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एज वी यूज इन मैथ, तो भाई लॉजिक इसी को तो कहते हैं ना यार, तो हम क्यों ये बात कहते हैं कि दीन और लॉजिक अलग अलग चीजें, कुरान और लॉजिक अलग अलग चीजें, हम क्यों कहते हैं, मुझे कोई इसका जवाब दे कि कुरान अलग है और लॉजिक अलग है, कुरान का लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, वो अंधी तकलीद है और ये जो है वो साइंस जो है ना वो लॉजिकल चीज है, और दीन जो है वो अंधा अंधाधुंध अंधी तकलीद है। कहां से अंधी तकलीद तकलीद हो गई यार, दीन कैसे अंधी तकलीद हो गई, पता है मसला क्या है, हम क्यों कहते हैं कि कुरान और लॉजिक का जो है आपस में ताल्लुक नहीं है, क्यों कहते हैं ना, तो उसकी कोई कोई रीजन है उसकी असल में, जिस वजह से हम ये बात कह जाते हैं कि दीन अलग चीज है और लॉजिक अलग चीज है। इसकी एक रीजन है, वो क्या रीजन है? अब सोचें वो क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हम ये बात कह जाते हैं कि कुरान अलग चीज है और लॉजिक अलग चीज है, वो रीजन क्या है कि जिसकी वजह से हम ये कह जाते हैं? जी मुश्किल में डाल दिया आप लोगों को आज। नहीं, पिछले सवाल का जवाब क्लियर है कि कुरान और लॉजिक अलग अलग नहीं है, यानी कुरान मजीद इज नॉट इलॉजिकल, दीन इज नॉट इलॉजिकल, ठीक है ना। अब ये जब हो गई ना तय, अब हम अगला सवाल आपसे ये कह रहे हैं कि फिर हम क्यों ये बात कहते हैं, जैसे इसी क्लास के अंदर चंद दिन पहले जो है वो किसी खातून ने ये कहा था कि साइंस जो है इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कुरान इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, नहीं ट्रस्ट भी नहीं बल्कि कुरान इज बेस्ड ऑन फेथ, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा था। उस दिन भी ये बात हुई थी और दोबारा ये आज यही बात कर रहा है। हम क्यों इस तरीके से कहते हैं कि कुरान और लॉजिक जो है ना ये अलग अलग चीज है, दीन और लॉजिक जो है वो अलग अलग चीज है, हम क्यों ये बात कहते हैं? इन्होंने सही जवाब दिया, पूरा तो नहीं जवाब दिया लेकिन सही जवाब दिया कि हमें इसी तरह से पढ़ाया गया है, हमें इसी तरीके से पढ़ाया गया है, ये एक एक रीजन है इसकी, ठीक है। लेकिन असल इसकी रीजन, जो मुकम्मल रीजन है ना, वो क्या है? मरूबियत की वजह से। किस वजह से? मरूबियत की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम हैं मरऊब। किसके मरऊब? काफिरों के मरऊब। और हमारा तालीमी निजाम क्या है? वो काफिर का बनाया हुआ तालीमी निजाम है और हम हैं काफिर से मरऊब। नाउ एज अ रिजल्ट, है ना, अब ये खाली है ना, आप भी तो अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी तो अंग्रेजी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, आपके नहीं समझ में आएगा इसके बगैर, इस वजह से कर रहा हूं इस्तेमाल, ठीक है। तो चूंकि हम काफिर के तालीमी निजाम से पढ़े हुए हैं और हम काफिर से मरऊब भी हैं, दोनों चीजें साथ साथ, इस वजह से हम अपनी तारीफात काफिर से लेते हैं, हम अपनी तारीफात अपनी डेफिनेशंस काफिर से लेते हैं। अब काफिर ने जो चीज हमारे सामने डिफाइन कर दिया ना एज लॉजिक, हम उसी को लॉजिक समझते हैं, जो उसने डिफाइन कर दिया कि भी ये होती है लॉजिक, हमने मान लिया कि हाँ ये होती है लॉजिक। तो अब उनकी जो लॉजिक है वो जब कुरान से सेट नहीं होती तो हम कहते हैं कि कुरान लॉजिक नहीं है और ये लॉजिक है, जो काफिर ने बताया हमें कि ये लॉजिक है तो वही लॉजिक है। और चूंकि कुरान मजीद जो है वो उस लॉजिक के अंदर फिट नहीं हो रहा, तो इस वजह से कुरान इलॉजिकल चीज है या नॉन लॉजिकल चीज है, या ये कह देते हैं कि उसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के बंदे, क्यों क्यों? व्हाई डू यू टेक योर डेफिनेशंस फ्रॉम कुफार? व्हाई? क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी डेफिनेशंस क्यों लू? आई विल हैव माय ओन डेफिनेशंस एंड आई विल टेक इट फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई विल टेक इट फ्रॉम कुरान, आई विल टेक इट फ्रॉम माय मशाइख, मैं वहां से डेफिनेशन लूंगा चीजों की, मैं तुमसे क्यों डेफिनेशन लू? इसलिए नहीं हम कहते, क्योंकि हम उनके रोब में हैं, क्योंकि हम उनके रोब में हैं, इस वजह से हम उनको ये बात नहीं कह देते, ठीक है। तो भाई वी नीड टू रिक्लेम रिक्लेम आवर राइट टू डिफाइन लॉजिक, टू डिफाइन व्हाट इज लॉजिक, वी हैव टू रिक्लेम दिस। और वो कैसे रिक्लेम करेंगे? जब हम इस रोब से बाहर निकलेंगे, मरूबियत से बाहर निकलेंगे, तब हम ये रिक्लेम कर सकेंगे, ठीक है। तो खामखा बोल देना कि जी लॉजिक अलग चीज है, कुरान अलग, मैं तो कुरान से बात करता हूं, मैं लॉजिक से बात नहीं करता। क्यों भाई, क्यों तुम कुरान से बात करते हो और लॉजिक से बात नहीं करते? क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? मोस्ट ऑफ आवर अफेयर्स ऑफ लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। जी उनका जो सारा कुछ है ना वो इलॉजिकल है, जो वो बातें करते हैं वो इलॉजिकल है, वो उनके मुंह पे मारे हैं आप, क्यों आप उनसे जो है वो दब रहे होते हैं, क्यों उनसे आप जो है वो दब रहे होते हैं कि जी वो लोग कह रहे हैं लॉजिक, हाँ वही लॉजिक है और मैं कुरान लॉजिक पे नहीं बैठता,
भाई आपको अगर कुरान की लॉजिक समझ में नहीं आ रही तो इस वजह से समझ में नहीं आ रही ना कि आप जाहिल हैं। अब जाहिल हैं तो इल्म हासिल करें, इसका इसका क्या हल है? इल्म हासिल करना जहालत का कोई और इलाज नहीं है। जहालत का ये इलाज नहीं है कि आप किसी गलत बात को जो है वो सही कहना शुरू करते हैं और सही बात को जो है वो गलत कहना शुरू करते हैं। चलो जी जहालत का इलाज हो गया, खत्म हो गई जहालत मेरी। भाई जहालत का एक ही इलाज है, इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करो अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें कुरान मजीद की लॉजिक नजर नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, ठीक है? तो सीधा सीधा अन्ना यकून लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा। अब कुरान मजीद की जो लॉजिक है ना, ये बहुत आसान सी लॉजिक है। इसके अंदर जो है ना, वो आपको मंतक के उसूल पढ़ना और जो है वो फलसफा पढ़ना और ये सब, अजी जब तक फलसफा नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक कुरान समझ में नहीं आएगा। जब तक मंतक की जो है वो दकीक किताबें नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक हम कुरान की तफसीर, भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को तौफीक अता फरमाई, मुफस्सरीन को तौफीक अता फरमाई, उन्होंने सादा जुबान के अंदर कुरान मजीद खोल खोल के हमारे सामने बयान कर दिया, ठीक है? अब जितना हम पढ़ रहे हैं, पिछले कितने दिन से पढ़ रहे हैं, 28 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 28 दिन से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? कोई ऐसी बात है जो जो कि आपको ना समझ में आई हो? कोई एक बात बताएं जो कि आपको ना समझ में आई हो 28 दिन के दुरूस के अंदर? क्या आपने फलसफा पढ़ा था? क्या आपने जो है वो मंतिक की चार पांच किताबें जो दरस निजामी पढ़ाई जाती हैं वो सारी पढ़ी थी? फिर कैसे समझ में आ गया? जब आपने पढ़ी नहीं थी तो आपको कैसे समझ में आ गई बातें? वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, ठीक है ना? तो भाई फिकही अहकामात डिराइव करना, तो उसके लिए भी तो नॉलेज की जरूरत होती है ना। तो वो नॉलेज जो है वो जो हासिल कर लेते हैं वो भी ड्राइव कर लेते हैं कुरान से फिकही अहकामात, और जो है वो नासिख और मनसूख का जो इल्म है तो वो भी भाई जो इल्म हासिल करता है वो भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो हम हमारे लिए हिदायत नामा है, जो जिक्र है, जो नसीहत नामा है, उसके लिए तो लॉजिक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, फलसफा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि कुरान मजीद ने जो है ना वो बेशक यानी उसमें तफसीली उलूम बेशक है, तो वो उलूम हासिल करके आपको पता चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही दकीक किस्म की, कॉन्वोल्यूटेड किस्म की, सोफिस्टिकेटेड किस्म की, कोई अजीब व गरीब किस्म का उसके अंदर फलसफा है जो कि कोई समझ ही नहीं सकता है, जो कि किसी को समझ में नहीं आएगी। वो बस जो है ना, वो कोई खास कोई है, बस वो पहुंचे हुए हैं, बस उनको समझ में आ रहा है और किसी और को समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद की लॉजिक इज वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक। तो इस सिंपल चीज को जो है वो खामखा जो है ना, वो एक मुसीबत बनाने की जरूरत नहीं है और मुसीबत बना के पेश करने की जरूरत नहीं। हम उसकी बिल्कुल नफी नहीं कर रहे कि शरीय अहकामात निकालने के लिए आपको इल्म की जरूरत है, ठीक है ना? और आपको जो है वो शरीय अहकामात और आपको कुरान मजीद के नासिख और मनसूख का पता होने के लिए, उसका ताल्लुक भी तो शरीय अहकामात के साथ ही है ना, कि क्या हुक्म जो है वो मनसूख हो गया तो अब वो नहीं है, और क्या हुक्म जो है वो अभी तक मौजूद है, जो नासिख है वो अभी तक मौजूद है, तो उसके लिए भी तो इल्म की जरूरत है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म की लॉजिक की तो उसके उसके लिए जरूरत नहीं है भाई। जो उलूम, जो क्या कहते हैं, मुतकल्लिमीन का जो इल्म है, वो आम मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं बनाया गया था, वो मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं बनाया गया था, जिसको इल्म कलाम कहा जाता है। सहाबा के जमाने में वो इल्म था ही नहीं, ताबईन के जमाने में वो इल्म था ही नहीं, तो कैसे वो इतने अच्छे मुसलमान बन गए जब उन्होंने इल्म कलाम पढ़ा ही नहीं, इल्म मंतक पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो वो कैसे अच्छे मुसलमान बन गए, हमसे भी ज्यादा अच्छे? भाई ये तो एक रिएक्शन था, इल्म कलाम तो एक रिएक्शन था बेवकूफों को चुप कराने के लिए और बस, राइट? गधों की ढैचू ढैचू को चुप कराने के लिए इल्म कलाम एक एक रीजन थी, एक नीड थी, वो नीड पूरी हो गई भाई, ठीक है? तो अब तो लॉजिक से बात करें, और लॉजिक क्या है? कुरान मजीद की अपनी लॉजिक सफिशिएंट लॉजिक है हमारे लिए, एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन व्हाट लॉजिक इज, ठीक ठीक है ना, सीधी सीधी बात करें कि अल्लाह के बंदे तुम कुरान को मानते हो? हाँ मैं मानता हूं, मैं तो मुसलमान हूं, तो कुरान मजीद तो ये कहता है, तो इसको भी तो मानो। सीधी सीधी लॉजिक है। तुम ये बात मानते हो कि बीवी के बगैर जो है बेटा नहीं होता? हाँ जी, बीवी के बगैर बेटा नहीं होता, तो फिर अल्लाह का बेटा कहां से हो गया? ठीक है, और उसके अलावा और भी मुस्तकिल हम लॉजिक पढ़े जा रहे हैं, मुस्तकिल हम लॉजिक पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आजकल कुछ दोस्त दुरूस तफसीर को छोड़ करके इल्मुल कलाम पढ़ते हैं, जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे तो उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, ये भी तो अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं। इल्मुल कलाम पढ़ रहे हैं, दरसे तफसीर नहीं सुनना उन्होंने। ठीक है, तो हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे, कोई रीजन होती है अल्लाह ताला किसी को करता है इस तरीके से ना। बहरहाल हमने अपना मैसेज पहुंचाना है, और उसके लिए हमें खुद इल्म हासिल करना पड़ेगा कुरान मजीद के बारे में। ठीक है, कि कुरान की लॉजिक है क्या चीज, एंड वी हैव टू स्टॉप बीइंग अंडर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कुफार, है ना। हमने अपनी यूनिवर्सिटी से कोई जो है वो लॉजिक की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम उसी को लॉजिक समझे चले आ रहे हैं, माने चले आ रहे हैं कि वही लॉजिक है, वही लॉजिक है, वही लॉजिक है जो यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई थी। क्यों भाई, क्यों मान रहे हो उनको यार? ठीक है, इस योग को जो है ना, ये गुलामी का जो योग है ना हमारे ऊपर, इस योग को पहले उतार के फेंकना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। वह हुआ बिकुल, अच्छा, वह खलक कुल्ल शय, और उसने हर शय को बनाया है। वह हुआ बिकुल शय इन अलीम, और वो हर शय के बारे में मुकम्मल इल्म रखने वाला है। अलीम, ठीक है, अलीम है, हर शय से वाकिफ है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही वाला बात जो कि पीछे की थी, ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुअफकून, आयत नंबर 95 95 में। ज़ालिकुमुल्लाहु, ए लोगों, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू ने अपने आसान तर्जमा कुरान के अंदर इसका तर्जमा कैसे किया, ए लोगों वो है अल्लाह, ज़ालिकुम अल्लाह, ए लोगों वो है अल्लाह। ठीक है, उनका तर्जुमा भी बिल्कुल सही तर्जुमा है, और यहाँ पर जो है वो जैसे हजरत शेख ने किया कि ज़ालिकुम अल्लाह, यही अल्लाह रब्बुकुम तुम्हारा रब है। ठीक है, और कोई तुम्हारा रब नहीं है, ये अल्लाह ही तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। अल्लाह, ये अल्लाह का जाती नाम है। ठीक है, तो उसके अंदर से अगर आप जो है वो अलिफ को हटा दें तो वो क्या बन जाता है, लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए। लिल्लाह का तर्जुमा उर्दू में क्या से करते हैं, अल्लाह के लिए। उसके अंदर से जो है वो एक नाम और हटा दें तो वो बन जाता है लहू। ठीक है, तो लहू उस एक के लिए, ठीक है, उस एक के लिए। और अगर लहू में से भी एक और लाम को हटा दें तो फिर क्या रह जाता है, हु। ठीक है, तो वो हु जो है वो जमीर है, लेकिन उसकी दूसरी जो जमीर बनती है, जमीर मुनफसिल, हु जो है ये मुत्तसिल है, और इसी का जो मुनफसिल फॉर्म है वो क्या है, हुआ। ठीक है, तो ये भी अल्लाह के लिए। ठीक है, तो इल्ला हुआ हो या इल्लल्लाह हो, एक ही बात, अल्लाह ही की बात हो रही है। ठीक है, तो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी सिवाय उसके। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया कि बट कैन दिस बी दिस लॉजिक बी क्वेश्चन दैट इन ईसा अलैहि सलाम केस ही डिडंट हैव अ फादर आइदर, बट डिस्पाइट दिस अल्लाह सुब्हानहु तआला मेड हिम पॉसिबल, सो इट इज अननेसेसरी फॉर अल्लाह सुब्हानहु तआला टू हैव अ वाइफ इन ऑर्डर टू हैव चिल्ड्रन दैट ही डिड नॉट हैव अ फादर आइदर। ठीक है, यानी ईसा अलैहि सलाम जो है वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो किसने उनको पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया ना। बट डिस्पाइट दिस अल्लाह सुब्हानहु तआला मेड हिम पॉसिबल, तो अल्लाह समवन मेड हिम पॉसिबल के बगैर बाप के बेटा हो गया। ठीक है, तो किसने, समवन मेड हिम पॉसिबल ना। तो यहां पर क्या है कि भाई तुम जिसको सबसे बड़ा मानते हो, जिसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है जो कि मेक पॉसिबल कर सके उसकी औलाद होना। ठीक है, तो जो आम कायदा है उसके मुताबिक तो
बीवी के साथ ही होता है ना बेटा, तो अल्लाह की तो बीवी भी नहीं है भाई। इस मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा किसने दिया? किसी ने दिया ना, मरियम अलैहिस्सलाम ने खुद तो नहीं पैदा कर दिया। ये तो वही है ना, मुत्तफिकुन अलैह के ऊपर लेके बात चलते हैं ना कि भाई तुम्हारे हमारे दरमियान मुत्तफिकुन अलैह क्या बात है। तो मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो अच्छा औरत थी, वो जो है वो मखलूक थी, वो मानते थे इन चीजों के मखलूक हैं, तो भाई उनके ऊपर कोई है ना, तो उसने जो है वो उनको बेटा दे दिया बगैर बाप के। लेकिन अल्लाह के ऊपर कौन है? अल्लाह के ऊपर तो कोई भी नहीं है जी, वो तो इस बात को भी वो लोग मानते हैं कि अल्लाह के ऊपर तो कोई भी नहीं, तो अल्लाह को किसने जो है वो बेटा दे दिया, हालांकि जो है वो उसकी तो बीवी नहीं। तो इट्स अननेसेसरी फॉर अल्लाह सुब्हानहू वतआला टू हैव अ वाइफ इन ऑर्डर टू हैव चिल्ड्रन। भाई अल्लाह ताला, इट्स अननेसेसरी फॉर अल्लाह टू हैव ए वाइफ इन ऑर्डर टू हैव चिल्ड्रन। मरियम अलैहिस्सलाम को जो कहते थे ना, तो वही उनके ऊपर किसी को मानते थे, और यहाँ पर अल्लाह के ऊपर किसी को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला उसी को फिर दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का बेटा कैसे हो सकता है, जबकि तुम भी कहते हो कि बेटा बाप के बगैर नहीं हो सकता या बीवी के बगैर नहीं हो सकता। वही ऊपर वाली बात आती है कि भाई ऊपर किसी को देने वाला होना चाहिए, नहीं कोई ऊपर करने वाला होना चाहिए, तो अल्लाह के ऊपर तो तुम किसी को मानते भी नहीं हो। ठीक है, लहू माफ़ समावाती वल्लाहु इल्लाह। जी, लहू भी हो गया और हुआ भी इस्तेमाल हो गया, और अल्लाह का नाम वो भी इस्तेमाल हो गया इसके अंदर माशाल्लाह। तो ज़ालिकुम वल्लाहु रब्बुकुम, कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह ही है जो तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। खालिकु कुल्ल शैइन फअबुदुहु। देखें एक बात यहाँ पे भूले नहीं, एक बात भूले नहीं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि कुरान इज लॉजिक, ठीक है, कुरान इज ऑल लॉजिक, इट्स नॉट इलॉजिकल, ठीक है ना। ये जो कुलिया बयान किया गया ना कि कुरान इज लॉजिकल, कुरान इज नॉट इलॉजिकल, इसका मतलब ये नहीं है कि एनी मुफस्सर ऑफ द कुरान, एनी आलिम ऑफ द कुरान और एनी मुसलमान विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द कुरान विद लॉजिक। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि चूंकि कुरान में हर चीज लॉजिकल है, तो इसका मतलब ये है कि हर मुसलमान को उसकी लॉजिक समझ में भी आनी चाहिए। हर बात के अंदर जो लॉजिक है कुरान मजीद की, वो हर मुसलमान को समझ में भी आनी चाहिए, और हर मुसलमान को जो है वो कैपेबल भी होना चाहिए कि वो उस लॉजिक को एक्सप्लेन भी कर सके। नहीं, इसका यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भाई, इसका ये कैसे मतलब हो गया, कैसे मतलब हो गया, क्या लॉजिक है इसकी कि नहीं है? अगर कुरान में लॉजिक है तो हर मुसलमान को भी लॉजिक आनी चाहिए, या इवन जो जिसने जो है वो कुरान मजीद को 8 साल के आलम कोर्स के अंदर पढ़ लिया तो उसको अब हर लॉजिक समझ में आनी चाहिए, या किसी ने 18 साल पढ़ लिया तो उसको हर चीज समझ में आनी चाहिए, या किसी ने जो है वो 28 या 38 साल पढ़ लिया तो उसको सारी चीजें। भाई नहीं, ये तो उसका मतलब नहीं है, ये तो इसका मतलब नहीं है भाई। ये तो इंसान का जो इल्म, भाई लॉजिक को समझना ये तो इल्म के ऊपर डिपेंडेंट है ना, राइट, और अकल की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आपने जो कितना इल्म हासिल किया और आपकी अकल की कैपेसिटी कितनी है कि आपने उस इल्म को कितना समझा, ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो अब जो है वो मुसलमान एतमाद करता है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कि भाई नबी अलैहिस्सलाम सच्चे थे, तो उन्होंने जो बात कही है वो सच्ची है, लेकिन उसका इल्म और उसकी अकल की कैपेसिटी तो कोई जरूरी नहीं है कि इस काबिल हो जाए कि अल्लाह ताला की हर लॉजिक उसको समझ में आनी शुरू हो जाए। क्या ये बात लॉजिकल नहीं है कि भाई ये तो अकल की कैपेसिटी और इल्म के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये बात लॉजिकल नहीं है? तो किसी मुसलमान को अगर किसी बात की लॉजिक जो है वो समझ में ना आ रही हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो बात लॉजिकल नहीं है। अब आप उसको जो है वो ये कहना शुरू कर देंगे, हाँ इसका कोई लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, तो भाई जो लॉजिक है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी अकल कम है, मेरी अकल की कैपेसिटी कम है, सलाहियत कम है, मेरा इल्म कम है, इस वजह से मुझे बात नहीं समझ में आ रही। तो क्या ये बात लॉजिक नहीं है कि जिसका इल्म कम हो, जिसकी अकल की कैपेसिटी कम हो, उसको पूरी बात समझ में नहीं आती? क्या ये बात लॉजिक नहीं है?
और ये बात लॉजिक नहीं है कि जब मेरा मेरी सलाहियत इतनी कम है कि दीवार के पार क्या हो रहा है मुझे इतना भी नहीं पता, तो फिर मुझे अपने तखलीक की सारी हिकमतें कैसे मैं क्लेम कर सकता हूं कि वो सारी मुझे पता हो? मुझे तो इतना भी नहीं पता कि चार बंदे मेरे सामने खड़े हुए हैं तो उनमें से कौन क्या सोच रहा है और क्या कौन क्या बोल रहा है। अगर चारों एक साथ बोलना शुरू हो जाए तो मुझे सबकी आवाज भी नहीं आती, सबकी बात भी समझ में नहीं आती। मैं इतना कम इल्म और इतना कम सलाहियत वाला हूं, तो जाहिर सी बात है, यानी इट इज कंप्लीटली लॉजिकल फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरी लॉजिक दैट माई क्रिएटर हैज पुट इन हिज कुरान, इन हिज कलाम। ठीक है ना, ये भी तो लॉजिकल कंक्लूजन ही है ना। तो अपनी कमाईगी का एहसास हो जाना, ये भी लॉजिक से ही बनता है। अपनी ला इल्मी का इदराक हो जाना, अपने किसी काम के काबिल ना होने का कायल हो जाना, ये भी तो लॉजिक से ही इंसान बनता है ना, कि यार मैं तो वो अपनी हरकतों, देखिए दीदे कसूर मिल जाए ना, दीदे कसूर अपनी खामियां हमें नजर आनी शुरू हो जाए ना, बस फिर ये कंक्लूजन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है कि यार आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट, क्योंकि खामियां नजर आ रही है ना मुझे, जो कि हकीकत में हैं भी, मेरे अंदर सारी खामियां मुझे नजर भी आने शुरू हो गई ना, तो अब क्या कंक्लूजन निकलता है? आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मेसिंग थिंग्स अप। एक्सेप्ट व्हाट? मेसिंग थिंग्स अप, चीजों को खराब कर देने का मैं केपेबल हो सकता हूँ, बेहतरी करने की मेरे अंदर केपेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या ये लॉजिकल नहीं है ये बात? अल्लाह ताला हमें ऐसी लॉजिक अता फरमा दे तो फिर बंदगी भी अता हो जाएगी वो साथ साथ हमें। ठीक है, तो क्या लिखा है उन्होंने, एवरीथिंग इज पॉसिबल अल्लाह सुब्हानहू बट ही हिमसेल्फ डिनाई दैट ही डज नॉट हैव चाइल्ड इन सूरह इखलास। हाँ नहीं, लेकिन ये यहाँ पे एक अलग सवाल हो रहा था कि केपेबिलिटी अल्लाह के लिए केपेबिलिटी बेटे की होनी का ताल्लुक जो है वो बीवी के साथ है, तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी तो बेटा आ गया था, हालांकि जो है वो बाप नहीं था, तो अगर बाप के बगैर बेटा आ सकता तो बीवी के बगैर भी बेटा आ सकता, ये सवाल था सर। ठीक है, तो सवाल का जवाब देना तो बाद की बात होती है, पहले सवाल को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल का जवाब ये हो सकता है कि भाई हाँ भी जवाब मिल गया उसका, दे दिया आपने सवाल का जवाब, या ये आपने कम से कम एक्नॉलेज तो कर लिया ना कि भाई मैंने अपने इस्तेदाद के मुताबिक वो सवाल दे दिया है, लेकिन मुझे हर सवाल का जवाब नहीं पता, तो ये एक्सेप्टेंस भी तो ला अदरी राइट, ये बेहतरीन जवाब होता है और सबसे अच्छा जवाब यही होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता, बाकी है कि हम थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करी है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदू, वो हर चीज का तख्लीक करने वाला है, फअबुदू बस तुम उसकी इबादत करो। ठीक है, फअबुदूहु उसकी इबादत करो, तो इयाहु फअबुदू सिर्फ उसकी इबादत करो, जैसे क्या है ना, या का नाबुदू है या का नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो वो हम अल्लाह ताला को अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और ये यकीन जो है वो दिला रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह ताला को तो हमारे दिल का हाल पता भी है, लेकिन जुबान से भी हम कहते हैं अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक है, वो हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं ना कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम उसकी इबादत करो, इसको उसी की इबादत करो, तो उसी की इबादत करो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। जब फिर वही बात कि इबादत जो है ना, जैसे कि अल्लाह इस लफ्ज को लेते हैं इबादत, ठीक है, हम तो इबादत के लफ्ज को ले लेते हैं ना जी, सजदा करना, हम इबादत के लफ्ज को इस माने में ले लेते हैं कि जी नमाज पढ़ना, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला तो कामिल मफहूम के साथ जब कोई बात करते हैं तो कामिल मफहूम के साथ करते हैं ना, अल्लाह ताला नाकस मफहूम के साथ तो बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी से टूट कर मोहब्बत करो, ये जो मोहब्बत शदीदा है ना, कि जिसको कि इबादत कहा जाता है सही मानों में, अल्लाह जिसको इबादत कहते हैं, कि तुम किसी से उसके बराबर की मोहब्बत या किसी से उससे ज्यादा मोहब्बत ना करो, सिर्फ उसी से ऐसी मोहब्बत करो जो कि तुम्हें उसका बंदा बना दे, ठीक है, यानी बंदे बन जाओ, तुम बंदे बन जाओ, सिर्फ जो है ना मोहब्बत करने वाले आम मोहब्बत करने वाले नहीं बन जाओ, बल्कि तुम बंदे बन जाओ, फाबुदू। तो ये सलीका है आरजू का, बंदगी मेरी बंदगी है। वो तो पीछे जो बात हो रही थी कि अपने दीदे कसूर इंसान को हासिल हो जाए, तो फिर वो ऐसे ही कहता है, कोई सलीका है आरजू का, ना बंदगी मेरी बंदगी। तो हुआ वह हुआ अला कुल्ल शय वकील, और वो हर चीज के ऊपर वकील है, कारसाज है। यानी वकील कौन होता है? वकील वो होता है कि जिसके सुपुर्द आप अपने मामले को कर देते, ठीक है। जैसे आजकल माशाल्लाह रमजान मुबारक में सबने जकात निकाली होगी, है ना, औरतों में नहीं निकाली होगी ना, औरतों के ऊपर भी जकात फर्ज होती है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर अपनी जकात फर्ज है, अगर शौहर दे देते हैं तो यू बेटर बी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। जिस तरह बेगम जो है वो जो खाने पकाती है ना आपके लिए मजे मजे के, तो शौहर जो है दे बेटर बी थैंकफुल टू हर, जुबान से अदा कर दें शुक्रिया, अगर नहीं भी कर रहे तो भी दिल में तो शुक्र गुजार रहे हैं ना, ताकि यानी बदतमीजी ना करें, डिमांड्स ना करें, ठीक है ना। इसको कहते हैं शुक्र गुजार होना। जुबान से कह दें जजाक अल्लाह खैर, आपने इतनी अच्छी अफ्तारी बनाई, इतनी अच्छी जो है वो हमारे लिए सेहरी बनाई, आप जो है वो हमारे लिए खाने बनाती हैं, ठीक है, तो जुबान से कह देना और भी माशाल्लाह। लेकिन अगर आप जुबान से नहीं कह रहे, फॉर वट एवर रीजन, आपको हमने सीखा नहीं है, या आपको जो है वो शर्म आती है, या जो है वो आप समझते हैं कि अगर कह दूंगा तो कहीं वो एकदम यहाँ पे से बाहर ना हो जाए, जो भी रीजन है, तो आप जुबान से नहीं कह रहे लेकिन दिल में तो शुक्रगुजार हो रहे हैं ना। तो दिल में शुक्रगुजार होने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है भाई दिल में शुक्रगुजार होने का किसी के? कि जो उसने आपके लिए किया है ना, ठीक है, आप उसके उप में उसमें कीड़े ना निकालें। क्या करें? क्या ना निकालें? कीड़े। हल्की फुल्की असलाह के लिए कि आप, नमक जरा कम हो गया था, थोड़ा सा नमक का जो है आप ख्याल रखिएगा, नमक और डाल दीजिएगा, या फलानी चीज जो है वो ऐसी, अगर ऐसी होती तो। लेकिन एक होता है कीड़े निकालना, ठीक है ना, और दूसरा क्या, कदर यानी शुक्रगुजार ना होने की दूसरी मैनिफेस्टेशन क्या होती है? कि डिमांडिंग इवन मोर, और करो, नहीं किया तुमने सही, इनफ नहीं किया, यू नीड टू डू मोर, डू मोर, डू मोर, जैसे IMF वाले करते हैं ना पाकिस्तान के साथ, डू मोर, और करो, और करो। तो ये जो दो चीजें होती हैं ना, कीड़े निकालना एंड डू मोर के जो डिमांड्स होती हैं, ये शुक्रगुजारी को किल कर देती हैं, यानी इट मीन्स आप शुक्रगुजार नहीं है। उसी तरीके से खवातीन, जकात जो है वो आपने अगर अपने पैसे से खुद नहीं निकाली, आपके शौहर ने निकाल दी, तो जुबान से शुक्रिया अदा कर नहीं सकती या नहीं कर रही हैं, तो कम से कम दिल में तो शुक्रगुजार है ना, कि हाँ भाई अगर ना निकलती ये जकात तो अल्लाह का अजाब मेरे शोहर पर नहीं आता, मेरे ऊपर आता, क्योंकि मेरी जकात नहीं निकली, अल्लाह का अजाब आता मेरे ऊपर, दुनिया में भी उसकी कोई ना कोई मुझे सजा मिल रही होती, आखिरत में भी उसको कोई ना कोई सजा मिल रही होती। तो मैं एहसान मंद हूं अपने शोहर की, के अल्लाह के अजाब से उसने मुझे बचाने का इंतजाम कर लिया। क्या ख्याल है बेगम साहिबा? है दिल के अंदर ये वाली सोच? ठीक है, बेशक जुबान से ना भी करें, चले ठीक है ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन दिल में ये सोच है कि अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए शौहर साहब ने मेरी मदद फरमाई, ठीक है। तो खैर ये तो हो गई जकात से मुतालिक, यानी ये तो शुक्रगुजारी से मुतालिक बात हो गई, और जो है वो जकात से मुतालिक बात ये थी जिसका ताल्लुक लफ्ज वकील के साथ था, कि माशाल्लाह सब लोगों ने जकात निकाली होगी, ठीक है, तो अब सबने तो जाकर के डायरेक्ट जो है वो गरीब जो मुस्तहिक जकात था उसके हाथ में जकात नहीं दी होगी ना, ठीक है ना, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं या जो कहीं और अमरीका शमरीका में रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपने किसी जानने वाले को अपनी जकात का वकील बना दिया होगा, ठीक है, कि भाई हम अपनी जकात की रकम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जो है ना
मुस्तहिकीन ज़कात जो आपके मोहल्ले में रहते होंगे पाकिस्तान में या इंडिया में, आप उन तक जो है वो हमारी ज़कात पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो ये वकील किसको बनाते हैं आप? किसी ऐरे गैरे नथु गैरे को तो अपना वकील ही बनाते हैं ना। वकील किसको बनाते हैं? जिसके ऊपर आपका एतमाद होता है और जिसको आप समझते हैं। यानी एतमाद क्या होता है कि एक तो वो कि आपके पैसे को जो है ना वो गलत जगह पे नहीं देगा, और दूसरा ये कि वो काम करने के काबिल भी है। तो सच्चा होना और अमीन होना भी जरूरी है इसके लिए, और काबिलियत का होना भी जरूरी है कि भाई वाकई उसके ऐसे ताल्लुकात होंगे लोगों के साथ और ऐसा वो फ़ाल और काम करने वाला बंदा होगा कि वो आपके रकम को लेके बैठा नहीं रहेगा अपने पास कि पता चला बड़ी हिफाजत के साथ बैठे हुए हैं आपकी ज़कात की रकम लेकर के, है ना, अमानतदारी कर रहे हैं। ज़कात की रकम जो है वो कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं ज़कात की रकम जो है वो कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, लेकिन आगे पहुंचा नहीं रहे, राइट। तो ऐसे अमीन और सच्चे वकील का क्या फायदा, जिसके अंदर सलाहियत ही ना हो काम करने की, ठीक है। तो वकील इसको कहते हैं। इसी वजह से जो कोर्ट के अंदर मुकदमात होते हैं ना, तो उसमें भी आप किसी को वकील बनाते हैं ना, तो ना सिर्फ ये कि जो कि आपके साथ मुखलिस हो, बल्कि जिसको कि वकालत करनी भी आती हो, ठीक है, मुकदमा लड़ना भी आता हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो वकील है हर चीज के ऊपर, क्या मतलब हर चीज के मामले में, कि उन एक तो वो यानी खैर ख्वाह है हमारे, ठीक है, हमसे कोई दुश्मनी नहीं अल्लाह ताला को कि खाम खा जो है ना वो विदाउट एनी रीजन जो है वो हमें सजाएं देना शुरू कर दें और जो है वो हमारे साथ जो है वो धोखा कर जाए ना उस बिल्ला, और दूसरा ये कि वो काम करने की सलाहियत भी पूरी की पूरी रखते हैं। अला कुल्ल शैइन वकील, ठीक है। तो खुलासे तफसीर में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि और वो यानी अल्लाह ऐसा है कि जिसने आसमान की तरफ से पानी बरसाया, फिर हमने उस एक ही पानी के जरिए से यानी उसी पानी के ही जरिए से जो ऊपर से बरसा है हर किस्म के रंग बरंग नबातात को जमीन से निकाला। एक ही पानी, एक ही मिट्टी से इतनी मुख्तलिफ किस्म के नबातात जिनके रंगो बू जायका फवायद बेहद मुख्तलिफ हैं, किस कदर अजीब करिश्माए कुदरत है ये, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद दिनों खैर मेहनत तो हमने कोई खास नहीं करी, लेकिन आज थोड़ा तवज्जो वगैरह तो रखी, तो छोटा सा एक गार्डन बनाया। उस गार्डन के अंदर काफी आप में से लोगों ने देखा भी होगा उसको, वही मिट्टी है, वही पानी हम सबको देते हैं, लेकिन किसी पौधे के अंदर से रेड फूल निकल रहा है, किसी के अंदर से जो है वो पर्पल फूल निकल रहा है, किसी के अंदर से जो है वो कैसा फूल निकल रहा है, किसी के अंदर से खुशबू वाले फूल निकल रहे हैं, किसी के अंदर से जो है वो बगैर खुशबू वाले फूल निकल रहे हैं। क्या अजीब व गरीब, इतनी छोटी सी जगह के ऊपर इतने असोर्टेड कलर्स वाले, राइट, फूल और पत्ते और पत्तियां, और अल्लाह करे कुछ सब्जियां भी निकल आए, वो भिंडी भिंडी की आपने बातें सुनी होंगी, अभी तक निकल के नहीं दिया, हाँ कुछ और निकल आए, ये थोड़ी छोटी सी, ठीक है। तो ये देखें, एक ही कसम का एक ही पानी दे रहे होते हैं और एक ही जो है मिट्टी होती है सबकी, ठीक है। अब यहाँ पर जो फरमाया ना कि जिनके रंग बू जायका फवाइद बेहद मुख्तलिफ हैं, किस कदर अजीब करिश्माए कुदरत है, अजीब करिश्माए कुदरत, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिनका ताल्लुक अल्लाह से और अल्लाह वालों से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, काफिर से, जो अल्लाह के रसूल को डिनाई करने वाला, ठीक है ना। एक तरफ तो वो हो गया ना जिनका अल्लाह के रसूल से ताल्लुक है, जो अल्लाह वाले, सबसे बड़े अल्लाह वाले कौन है, अल्लाह के रसूल, ठीक है ना, और अल्लाह जो है वो उनके ऊपर, और बाकी छोटे अल्लाह वाले यानी रसूल के सहाबा फिर ताबेईन फिर तबा ताबेईन, यानी ये एक चेन है पूरी की पूरी, एक साइड है कि जिनका यहां से ताल्लुक होता है तो फिर वो इस बात को सुनेंगे और कहेंगे वाकई क्या अल्लाह ताला की शान है, क्या अल्लाह ताला जो है वो फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। लेकिन जिसका इस साइड से ताल्लुक नहीं, बल्कि किस साइड से ताल्लुक है, अल्लाह के रसूल को डिनाई करने वालों से जिसका ताल्लुक है, ठीक है ना, अल्लाह के रसूल को डिनाई करने वाले यानी जिसको काफिर कहते हैं, और अल्लाह को उसका मुकाम ना देने वाले यानी जैसा अल्लाह है वैसा नहीं मानने वाले, बल्कि कमजोर मानने वाले अल्लाह को, और अल्लाह को जो है वो शरीकों का मोहताज मानने वाले, पार्टनर्स का की नीड रखने वाला मानने वाले हैं, जिनका इधर से ताल्लुक है, और जिनका जो है वो इन्हीं लोगों की बातों से ताल्लुक है, इन्हीं लोगों की किताबों से ताल्लुक है, इन्हीं लोगों के कलाम से ताल्लुक है, इन्हीं लोगों के साइंस से ताल्लुक है। तो वो जब ये बातें सुनता है तो कहते हैं ये कौन सा अजीब करिश्मा कुदरत है, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है। भाई देखो आप जो है ना, वो जो बीज होता है ना, तो उसके हम तो जेनेटिक्स तक पहुंच गए हैं, उसके अंदर जीन्स ऐसी होती हैं, कलर वाली जीन्स होती हैं, ठीक है ना। तो वो कलर वाली जीन्स जो होती है ना, उन जीन्स को देखो हमने चेंज कर दिया, हमने दूसरी जीन्स उसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर दी है। अब जो है ना, वो पहले इस फूल का कलर जो है वो रेड होता था, अब जो है वो पिंक भी होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है, पर्पल भी होता है, और ये जो है वो पहले जो है वो जो सो कॉल्ड नेचर जो है वो इस फूल को उगाती थी, वो 2.5 दिन में खत्म हो जाता था, 3 दिन में वो मुरझा जाता था। अब देखो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से जो फूल बनाया है, तो वो जो है ना वो तो मुरझाता ही नहीं है, वो तो इतना पावरफुल भी होता है, और वो तो इतना खूबसूरत भी होता है, और ये भी होता है, वो भी होता है। तो भाई आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग नाउ, ठीक है ना। तो अजीब तो वो चीज होती है जिसको क्या आप एक्सप्लेन ना कर सकें, ये तो बस वो जो जाहिल मौलवी होते हैं ना, या मौलवी तरह के जो लोग होते हैं ना, वो उनको बस ये सारी सारी चीजें अजीब लग रही होती हैं। भाई हम तो साइंस पढ़े हुए हैं, और हमें तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अब नथिंग इज अजीब फॉर अस, राइट, नथिंग इज अ करिश्मा फॉर अस एनी मोर, वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड वी कैन इवन जस्ट एक्सप्लेन नहीं, वी कैन इवन मैनिपुलेट एनीथिंग दैट वी वॉन्ट, राइट, वी कैन कंट्रोल दिस, हद तक कि अब तो बारिशें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग के जरिए से जो है वो। देखो वो जो कहते हैं अल्लाह बारिश बरसाता है, देखो हमारी हमारे जो है ना ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है ये बारिश बरसाती है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात तो खैर है, लेकिन होता है ना कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, राइट। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये जो तुमने क्लाउड सीडिंग करी है, तो तुमने कैसे करी है क्लाउड सीडिंग, ये जो तुमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है, तो तुमने ये कैसे करी जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। तुमने फूलों का रंग जो चेंज किया, और उनके जो शेप और चेंज किया, और ये चेंज किया वो चेंज किया, कैसे किया भाई, तुमने क्या अकल जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, ये भी तुमने खुद ही बनाया था, ये दिमाग तुमने अपना खुद ही बनाया था, उस दिमाग के अंदर जो अकल की फैकल्टी है, जो अकल की जो सलाहियत है, वो तुमने क्या खुद ही पैदा करी थी क्या। तो जो अकल और दिमाग तुम पैदाइश में अपने साथ लेकर के आए थे, राइट, उसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए तुमने इल्म हासिल किया ना, उसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए तुमने रिसर्च करी, उसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए तुमने लैब्स के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करी, ठीक है। तो बेशक तुमने क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी बनाई, ये भी बनाई, लेकिन कैसे बनाई भाई, अकल जो अल्लाह ने तुम्हें दी थी वही तो हम कह रहे हैं, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें ये सारी चीज देनी, उसी के साथ तो तुम ये सारी करते हो, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, व्हाई, व्हाई इज इट नॉट वेरी कॉमन, बिकॉज शैतान, शैतान इंसान को अंधा कर देता है, जब वो अल्लाह वालों के साइड का इनकार कर देता है ना, जो अल्लाह वालों की साइड थी, जो कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल, फिर अल्लाह के रसूल के सहाबा, फिर ये पूरी जो एक चेन चल रही है, जब इधर का इनकार करता है ना इंसान के, नहीं जी ये ना बस, ये तो बस बेकार किस्म के साइड है, ये इस इधर तो मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, इधर इधर का टाइम नहीं है मेरे पास, ये चीजें बेकार हैं, ये चीजें, तो फिर अल्लाह ताला शैतान को उस पर मुसल्लत कर देता है, ये सजा होती है दुनिया के अंदर, ये सजा होती है। अब जब शैतान मुसल्लत हो जाता है ना, तो फिर वो आंखों देखी चीज को भी छुपा देता है, भुला देता है, राइट, धोखे में मुब्तला कर देता है। हालांकि पता है दिमाग तो कहीं कोई छुपी हुई चीज को थोड़ी है, दिमाग तो हर बंदे के सर के अंदर मौजूद है ना, और ये साइंस वाला बंदा तो अच्छी तरीके से जानता है कि दिमाग सर के अंदर मौजूद है, हर बंदे उसके पास खुद मौजूद है, लेकिन उसी का इनकार करना शुरू कर देता है कि ये दिमाग कहां से आया, कितनी आम फहम बात है ये, लेकिन शैतान अंधा कर देता है। और क्यों अंधा कर देता है, इनकार की वजह से, कुफर की वजह से, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू एक्सप्लेन समथिंग, इट डजंट, यानी क्या कहते हैं, निगेट दी, क्या कहते हैं उसको, यानी द एस्टोनिशिंग नेचर ऑफ इट. जस्ट बिकॉज हमें कुछ चीज अब समझ में आनी शुरू हो गई, या हम उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो तब्दीली भी करने के काबिल हो गए, लेकिन उसकी जो जो अमेजिंग बात है कि भाई, एक तो ये देखो, ये तो हमने इतनी रिसर्च करके और इतनी मेहनत करके इतनी सी चीज चेंज कर लाई है उसके अंदर, राइट? तो जिसने असल में ये चीज बनाई होगी, असलन फ्रॉम नथिंग जिसने ये चीज बनाई होगी, क्योंकि कायनात के भी कहते हैं ना कि पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है ना? तो जिसने नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में इसको लाया, और जिसने, कल हमारी छोटी वाली जो है पूछ रही थी कि अब्बू क्या एक जानवर की नस्ल से दूसरे जानवर पैदा हो सकते हैं, ठीक है? मतलब माशाल्लाह आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रही होती हैं आजकल, तो जैसे वो समझ रही थी ना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम, एक आदम अलैहिस्सलाम है ना, मिन नफ्सियों वाहिदा, वो भी सुन रही होती है माशाल्लाह क्लास को, तो नफ्सियों वाहिदा से जो है वो फिर काला इंसान भी बना, गोरा इंसान भी बना, लंबा इंसान भी बना, छोटा इंसान भी बना, मोटा इंसान भी बना, फला इंसान भी बना. तो उन्होंने सोचा कि शायद जानवर भी कोई एक ही होगा, है नफ्सी वाहिदतन हैवान वाहिदतन, कोई एक हैवान होगा, उस हैवान से फिर हाथी भी बन गए, घोड़े भी बन गए, गधे भी बन गए, गेंडे भी बन गए, फलाने भी बन गए, है ना भाई? तो बच्चा है, बच्चे के जहन में सवाल आया अल्हम्दुलिल्लाह. तो उन्होंने पूछा, तो हमने उनको क्या जवाब दिया कि नहीं, ये इंसान के साथ है नफ्सी वाहिदिन, ठीक है ना, वाहिदतिन, लेकिन जानवरों का ऐसा मामला नहीं है. जानवर जैसे हमें नजर आते हैं ना, अल्लाह ताला ने वैसे हर जानवर को वैसे ही बनाया, अलग अलग नस्ल बनाया, ठीक है? तो गेंडा जो है वो यानी बीवर के अंदर से नहीं निकला, और हाथी जो है वो गेंडे के अंदर से नहीं निकला, बल्कि हाथी को अलग बनाया, गेंडे को अलग बनाया, और इससे फिर आगे अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, और जोड़े से फिर आगे जो है वो इनकी नस्लें चलाई, ठीक है ना? तो ये यानी अल्लाह ताला ने ये जो चीजें बनाई तो कैसे बनाई, क्या ये करिश्मा है, कुदरत नहीं है, अजीब बात नहीं है, ठीक है? और फिर दूसरी बात कि जो तुमने एक्सपेरिमेंटेशन इतनी मेहनत करके, जो थोड़ा बहुत तुम चेंजेस कर भी रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह भी जो तुमने हैं किस अकल की बुनियाद पर करी है, वो अकल किसने बनाई, है ना? तो भाई अजीब व गरीब, मैग्निफिसेंट एंड एस्टोनिशिंग, राइट? तो लेकिन बात वही कि जो इधर से इनकार करने पे तुले हुए होते हैं, नहीं मैंने तो बात ही नहीं सुननी, मैंने तो इधर जाना ही नहीं है, मैंने तो कुरान मजीद के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो साइंस पढ़नी है, ग्रेड्स देकर के आने, मुझे तो अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी कमाई करनी है, मैंने सारे के सारे काम करने, ठीक है ना? अल्लाह ने कुछ नहीं करना, मैंने ही सब कुछ करना है, यानी एकली करना है, तवक्कुल नहीं करना है, यानी मैंने सारे अजवाब इख्तियार करने, और वो भी जाहिर है बेवकूफी के अस्बाब इख्तियार करते हैं. फिर भाई ए अकल के बाद तवक्कुल का भी तो लफ्ज है ना, अल्लाह पे तवक्कुल भी तो करना है. तो बस तुम अस्बाब के अंदर ऐसे गुम हो जाते हो कि फिर तवक्कुल की नौबत ही नहीं आती तुम्हारे यहाँ, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ ध्यान करना, और अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना, इसकी नौबत ही नहीं आती. तुम लगे वो साइंस पढ़ने में, लगे वो टेक्नोलॉजी के अंदर, लगे वो जो है उसके अंदर, और नंबर वन प्रायोरिटी दे करके, ठीक है, दीन को दीनदार बन गए, थोड़े से मौलवी बन गए, दाढ़ी वाड़ी उगा ली है तुमने, स्कार्फ स्कार्फ पहन लिया है, तो अब दीन को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो कौन सी वाली प्रायोरिटी? सेकंड प्रायोरिटी, यानी सेकेंडरी प्रायोरिटी. फर्स्ट थिंग वही साइंस, वही असबाब, वही जो है वो जो तुम्हें आंख से नजर आता है, कान से, जो तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी की चीजें नजर आ रही हैं, बगैर बजाहिर तुम्हें धोखे में रले हुए हो, वेस्ट की कामयाबी तो, अंग्रेजी पढ़े लोगों की कामयाबी तो, साइंस पढ़े लोगों, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है उसी को तुमने नंबर वन प्रायोरिटी दिया हुआ है. और दीन को तुम चूंकि दीनदार कहलाने शुरू हो गए हो, पहले दीनदार नहीं थे तो दीन तो कहीं भी नहीं आता था ना, सेकेंडरी भी नहीं आता था, लेकिन दीनदार बनने के बाद क्या होता है, दीन हमारी सेकेंडरी प्रायोरिटी में आ जाता है, लेकिन प्राइमरी में नहीं आता. प्राइमरी में जब तक नहीं आएगा ना, प्राइमरी प्रायोरिटी, नंबर वन प्रायोरिटी दीन ही बनेगा ना, उस वक्त तक जो है ना हम अल्लाह वाले दीनदार नहीं बनेंगे, हम अपने दीन वाले दीनदार बनेंगे, यानी दीनदार का मतलब बस अपना एक दीन बनाया हुआ और उसको कर रहे हैं आप उसके हिसाब से काम। अल्लाह का दीन तो भाई सिर्फ वो दीन है, सिर्फ वो दीन अल्लाह का दीन है कि जो कि नंबर वन प्रायोरिटी पे हो। अगर आपका दीन मेरा दीन नंबर वन प्रायोरिटी हमारी नहीं है ना, लिख लें इस बात को अपने दिल पर लिख लें कि वो अल्लाह का दीन है ही नहीं, वो आपका अपना बनाया हुआ दीन है। बात समझ में आई? कोई है इसका इनकार करने वाला? बताए। जिस दीन को आपने नंबर टू प्रायोरिटी पे रखा हुआ है ना, वो आपका अपना गढ़ा हुआ एक दीन है, चाहे उसके अंदर नमाजें भी हों, चाहे उसके अंदर तिलावतें भी हों, चाहे उसके अंदर जो है वो उम्रे भी हों, चाहे उसके अंदर जो है वो सदके खैरात भी हों, लेकिन व्हेन दुनिया कम्स वो सेकंड नंबर पे चला जाता है ना। जहां पे रोब आता है वहां पे वो रोब जो है, पर वो उन्हीं का रोब जो कि दीन का इनकार करने वाले हैं, उन्हीं का रोब है, उन्हीं की बात मानी जा रही है। उन्होंने कहा जी पर्दा जो है ना ये तो नहीं चलेगा शादी के अंदर, तो जी कोई बात नहीं, शादी शादी के वक्त पर्दा छोड़ दिया। वैसे बुरका ओढ़ करके भागे चली आ रही है, बुरके ओढ़ ओढ़ करके, जहां शादी ब्याह का मौका आया बुरका उतर गया। वैसे जो है वो म्यूजिक हराम है जी, म्यूजिक हराम है जी, म्यूजिक हराम है जी। शादी ब्याह का मौका आया, नहीं जी शादी ब्याह में म्यूजिक के बगैर शादी हो ही नहीं सकती। ये अल्लाह का दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन नहीं है जो कि शादी में नहीं होता, शादी के बाहर होता है, जो कि मस्जिद के अंदर होता है, मस्जिद के बाहर नहीं होता है, जो नक्शबंदी इज्तिमा में होता है और जो फैमिली गैदरिंग में नहीं होता, ये अल्लाह का दीन नहीं है। ठीक है ना, इस मखमसे से बाहर निकलने के लिए हमें अभी और इसी वक्त इस मखमसे से तौबा कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए माशाल्लाह नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास इज डिक्लाइनिंग। शुरू में माशाल्लाह 120 130 भी हो जाते थे, अब जो है वो अभी तो रमजान खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है फिर वो शुरू में सुना होगा अच्छे बड़े अच्छा दरसो कुरान होता है, अब पता चला कि नहीं इस दरसो कुरान में तो भीड़ भीड़ इज नॉट ए प्रायोरिटी, लोगों को जो है वो आईने ही दिखाते रहते हैं तो हर वक्त। तो चलो यार छोड़ो, हम कहीं और जाके दरसो कुरान सुन लेते हैं, पता नहीं अल्लाह आलम क्या इसकी वजह बनती है कि बाद में नंबर्स कम हो जाते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है हमें इसकी फिक्र नहीं पड़ी होती, तो बात अल्लाह करे हम सबके समझ में आ जाए। बेशक नहीं बना पा रहे फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन दिल में इसको बुरा तो समझे ना, ठीक है ना, नादिम तो हो ना इसके ऊपर कि हमने कैसे जिस चीज को अपना दीन कहा है कैसे उसको हमने नंबर वन प्रायोरिटी नहीं दी हुई, पर उसको नंबर टू वगैरह कोई प्रायोरिटी दी हुई है। अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर माफ फरमा दे, और सही मानों में हमें अपने दीन के ऊपर चलना और अपने हिसाब जैसा अल्लाह का हक है हमारे ऊपर, वैसे ही उसके दीन का हक मानने और तस्लीम करने के हमें तौफीक अता फरमा दे। अगर ये हमने हासिल कर लिया तो ये रमजान मुबारक हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा रमजान मुबारक बन गया। अल्लाह ताला बना दे। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह। सलाम वालेकुम। जल्दी खत्म ना क्या करें, थोड़ा देर ठहर जाया करें। जिन्होंने वो स्लाइड बनाई है ना, उन्होंने खास इस नीयत से बनाई है कि लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिल जाए उसके ऊपर क्या नंबर वगैरह क्लास के नाम लिखे हुए। आप जो है वो धन करके जो है वो फौरन से स्लाइड हटा देती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं क्या करें। वालेकुम सलाम।